نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير دم ذریعہ علاج اس میں سے ہم نظر بد کا علاج کر رہے ہیں کہ نظر بد کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے ابھی تک ہم نے جو بات کی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم نظر بد کا انکار نہیں کر سکتے بخاری کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے اور یہ کسی انسان کو بستر تک یعنی بیماری کے بستر تک بھی پہنچا سکتی ہے اور اسی طرح سے یہ ایک انسان کو ایک اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے یعنی اونٹ بیمار ہوتا ہے پھر تڑپتا ہے اور پھر آخر اس کو ذبح کرنا پڑ جاتا ہے پھر اسی طرح ہم نے ایک بات دیکھی تھی کہ اپنے کی بھی نظر لگتی ہے پیار کی بھی نظر لگتی ہے حیرت کی بھی نظر لگتی ہے کبھی کہتے ہیں بس یہ جو ہیں ہے نا اس سے بچا کریں اور یہ چیز کل نہیں بتائی آپ کو یہ آج نوٹ کریں اپنے پاس یہ بک میں بھی نہیں آپ کو ملے گی کوئی چیز ایسی جس کو آپ اپنی نظر سے دیکھیں اور دوسروں کو اس کے اندر ایک قسم کا سرپرائز دے دیں وہ میرے جیسا کوئی نہیں میرے جیسا کوئی پہن نہیں سکتا میرے جیسا کوئی اوڑھ نہیں سکتا ہو جو میں لگ رہی ہوں وہ کوئی نہ لگے جیسے آپ دیکھیں نا عموماً عورتوں میں ایک عادت ہوتی ہے اور وہ کیا ہے کہ جی ایسے کپڑے پہننے ہیں کہ بس آنکھیں کھلی کھلی کی رہ جائیں اب آپ سوچیں جب آنکھیں جو کھلی کی رہ گئیں تو لگنی ہے نا نظر سمجھ آ گئی ہے ایک سسٹر تھی تو وہ اس نے کہا مجھے ایسا جوڑا لا کر دیں کہ جو دیکھے وہ بے ہوش ہو جائے تو یہ کیا سوچ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں تو یاد رکھیے دکھانے سے زیادہ شکرانے کی کوشش کیا کریں پہنیں اچھا پہنیں اچھا کھائیں اچھی اچھی باتیں کریں لوگوں سے خیر کی بات کریں لیکن اس کو ہر وقت اس سوچ میں نہ رکھیں کہ آپ کو بس یہ چیز دوسروں کو حیران کر دے ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ ایک بہت برا ایٹیکیٹ ہے دوسرے کو جلانا کیونکہ موسٹلی خواتین جب کسی کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھتی ہیں جو دوسرے کے پاس نہیں ہوتی تو وہ تقابل کرتی ہیں گھر میں جھگڑا ہو سکتا ہے میاں سے کہیں گی تم ایک ایسے ہو تم مجھے کچھ نہیں لاتے مثلا کوئی ایک عورت ہے وہ اپنے شوہر کے کسی گفٹ کی بات کرتی ہے میرے شوہر نے یہ دیا میرے ہسبینڈ نے عید پہ یہ دیا میرے ہسبینڈ نے مجھے شادی کی سالگرہ پہ یہ دیا بہت بڑے دل والے لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں جن کو تربیت جن کی ہوئی ہو جن کو اس دنیا سے بے نیاز کیا وہ کہتے ہیں ہو دیا ہے تو کوئی بات نہیں اس فائن میرا تو ہسبینڈ ہی میرے لیے ایک تحفہ ہے میں نے باقی چیزوں کو کیا کرنا رائٹ لیکن عمومی طور پہ انسان میں تقابل ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے تو ڈسپلے سے بچنا ہے ہم نے کیا چیز دیکھی تھی کہ نظر لگنے سے پہلے کے کاموں میں پہلی چیز کیا تھی کہ ہم دعائیں پڑھیں اور وہی ساری پیش بندیاں رکھیں جو ہمارے لیے بتائی گئیں دوسری چیز یہ تھی کہ بارک اللہ یا چلے آپ بھی بتائیے کیا دعا ہے ذرا مل کے پڑھیں سارے یعنی ان کو برکت کی دعا دینی اور یہ صرف اس کتاب کے پڑھنے یا کلاس میں آ کے یاد رکھنے والی چیزیں تو نہیں ہے نا اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے کب جب ہمیں کسی کی کوئی چیز اچھی لگے تیسری چیز کیا تھی کہ ایکسپوجر سے بچنا ہے ٹھیک ہے آج ہم دیکھیں گے نظر لگنے سے دوسری قسم پیج نمبر ہے 19 جن محاسن کے اظہار سے نظر لگنے کا خدشہ ہو انہیں پوشیدہ رکھے یہ تو ہو گیا تھا اوپر اب ہم آگے دیکھتے ہیں دوسری قسم اگر نظر لگ چکی ہے تو کیا علاج ہو ٹھیک ہے پہلی چیز اگر نظر لگانے والے کا علم ہو تو اسے وضو کرنے کو کہا جائے پھر جسے نظر لگی ہے اسے اس وضو والے پانی سے غسل کروا دیا جائے بات سمجھ گئے یعنی آپ کو پتہ کیسے لگتا ہے کہ نظر لگی ہوئی ہے اس پہ واقعہ ہے اور یہ ٹاپک ہم نے تفصیل سے کیا ہوا ہے جادو کے سیمینار میں شروع کا ہی ٹاپک ہمارا نظر بد کا تھا مجھے یاد جو آ رہا ہے ایک صحابی تھے تو وہ بڑے گورے اور گدلے جسم والے تھے تو پہلے دور میں کوئی واش رومز اس طرح سے تھوڑی ہوتے تھے لوگ کسی بھی جگہ پہ پردہ کر کے یا جو کھڑا پانی ہے یا تالاب ہے وہاں غسل کیا کرتے تھے تو یہ صحابی جو تھے غسل کر رہے تھے اور اس کے بعد ایک دم جب بستر پہ پڑے ایسے پڑے کہ بیمار ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات آئی تو آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم غسل کر رہے تھے تو کوئی وہاں سے گزرا تھا تو انہوں نے کہا ایک شخص گزرا تھا کہا اچھا اس نے کیا کہا تو اس نے کہا جس کا خلاصہ یہ تھا کیا خوبصورت جسم ہے یعنی عورتوں والا جسم ہے یا جیسے بھی ایک کسی کی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ پھر اس کو بلایا گیا پھر آپ نے اس کو کہا کہ تم غسل کرو بلکہ اس نے غسل کیا یہاں وضو کی بات ہے یہ لیسٹ بات ہے لیکن اس حدیث میں آپ نے اس آدمی سے کہا کہ تم غسل کرو پھر اس نے غسل کیا تو اس پانی سے کہا کہ اب یہ شخص جس کو نظر لگی ہے وہ غسل کرے لیکن وضو کرنے کی بات بھی آتی ہے جو کہ یہاں دی گئی تو اس کا جو کہ پتہ تھا और जब ये अमल किया तो वो सहाबी ठीक हो गए। तो आपने कहा कि तुझे नज़र लगी थी, तो जब तुम्हें अपने किसी भाई में कोई चीज़ अच्छी लगे तो बारक अल्लाह या अल्लाह मबारक अल्लाह या कुछ भी अल्लाह मबारक की दुआएं दिया करो। तो पता क्या चला, सिंपल सी बात है, अगर नज़र लगाने वाले का इल्म हुआ तो इसे वुज़ू करने को कहा जाए और वो वुज़ू से फिर गुसल किया जाएगा। अब यहाँ तो ये इतनी सी बात है, लेकिन इस पे मैंने जो बुक यूज़ की थी जादू के सेमिनार में, वो अब्दुल्ला बिन बास की थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आज से कुछ साल पहले फौत हो गए, नाबीना थे। फतावा कमेटी जो है सऊदी अरब की, उसके वो बड़े थे। तो उनकी एक बुक थी, आप भी ऑनलाइन से सर्च करके ले सकते हैं, जादू और उसका शरई इलाज। तो उसमें कुछ और भी इसी के साथ चीज़ें जो नकल की थी, उसमें ये भी था कि अगर आपको किसी का पता ही नहीं है अब क्या करें, तो बाज़ उलमा, अब यहाँ इस बुक में नहीं है इसलिए मैं आपको सिर्फ वो जो इल्म मेरे हद तक वो दे रही हूँ, उसके बाद आपकी मर्जी जो मर्जी करें। कहते किसी भी नमाजी शख्स को, कोई शख्स जो नेक है, अकीदा तौहीद पे है, शिर्क नहीं है, वही चीज़ें जो हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं कि ये सब करने से बंदा वैसे ही बच जाता है, तो कहते हैं कि किसी भी नेक शख्स को कहा जाए कि वो वुज़ू करे और उसके फिर वो वुज़ू के बचे हुए पानी से उस शख्स को गुसल कराया जाए, तो ये भी इलाज है। ये उस सूरत में जब पता ना हो, और आप हमारा कल्चर किसी को आप कह तो दें ज़रा कि आप ज़रा आइए, आपकी नज़र लगी थी मेरे बच्चे को तो वज़ू करके दें, तो वही मुकदमा बन जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें सहाबा माइंड नहीं करते। अब वो सहाबी को अल्लाह के नबी ने कहा वज़ू करो, उन्होंने कर लिया, माइंड ही नहीं किया। हम सब कुछ करते हैं लेकिन हम मानते नहीं हैं, हम कहते हैं नहीं जी, लो मेरी नज़र कैसे लग सकती है, लो मेरे पे शक करते हैं, अच्छा आज के बाद फिर मैं तुम्हें मिलूंगी नहीं, फिर तो मैं तुम्हें देखूंगी नहीं। तो ऐसा नहीं करना। तो बहरहाल ये कि ये एक इलाज है। फिर इसके बाद दर्जा ज़ैल आयात और सूरतें बकसरत तिलावत की जाएं। कब कहाँ किस तरह बैठ के करनी है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जानने की, लंबे चौड़े वज़ायफ़ हैं। बस लोग हैं एक उस जैसे एक उस्ताद अपनी मर्ज़ी से किसी को होमवर्क दे देता है ना, मैं आपको कहूँ कि अच्छा ये जो माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह वाली दुआ आप सब ने कल 10 दफ़ा लिख के लानी है, तो ये मेरा काम है। ये बात आप बिल्कुल उसको समझिएगा कि बहुत सारे लोग कुछ रूहानी मुआलजीन के पास जाते हैं जो कुरान सुन्नत से अमल करते हैं, और वो आपको कोई अमल मुकर्रर करके दे देते हैं कि अच्छा आप सुबह असर से लेके मगरिब के बीच में बैठ के पढ़ें या कुछ है। अब आप कहते हैं किसकी हदीस के है या क्या चीज़ है, तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या समझ सकती हूँ कि ये एक उस्ताद का होमवर्क है। मसलन आप देखिए कि इंटेंसिटी कम या ज़्यादा करने से चीज़ का असर ख़त्म हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। मेरी एक बच्ची से बात हुई तो वो डिस्पेंसरी में काम करती है, तो मैंने उसे कहा कि तुम कभी कोई तुमसे गलती भी हुई, तो अपना एक तजर्बा सुनाने लगी कि सेम दवाई थी लेकिन इंटेंसिटी का फ़र्क था तो मैं वो नहीं पढ़ सकी, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, हो जाती है ना, और उससे रिएक्शन हो जाता है। अब एक उस्ताद है उसको पता है कि ये दुआ अगर वो 10 दफ़ा अपने हाथ से एक दफ़ा लिख लेगा ना तो इसको कभी भूलेगी नहीं, तो उस्ताद कह देता है 10 दफ़ा पढ़ना ना, वो ये कहता है कि 10 दफ़ा से 11 पढ़ी तो गुनाह हो जाएगा या 9 पढ़ दी तो सुन्नत नहीं रहेगी, वो ये नहीं दावा करता कि ये सुन्नत है, वो कहता है एक होमवर्क है, इस हद तक तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक ख़ास डोज देनी होती है, जैसे एक और आगे भी आप पढ़ेंगे कहीं ना कहीं एक चीज़ आएगी कि नबी सल्लम के पास एक शख्स आया कहा अल्लाह के नबी मेरे भाई के पेट में बड़ा दर्द है तो क्या करूँ, तो आपने कहा कि उसको शहद दे दो, वो गए और शहद दिया, अगले दिन फिर आए कहा पेट और लूज़ हो गया, कहा फिर शहद दो। अब आप देखिए हम जैसे होते हैं तो बातें करते लो जी पहले बीमार हो गया, अब आप और वही कह रहे नहीं 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 हमें कोई और चीज़ दें, आपने कहा नहीं शहद दो, दूसरे दिन फिर दिया, फिर वापस आ गए कहा आप तो और भी तबीयत ख़राब है कहा फिर दो, 3 दिन तक मुसलसल आप उसको शहद दिलवाते रहे, तीसरे दिन आए तो कहा मेरे भाई ठीक हो गए, तो आपने फरमाया कि ख़ास मखसूस मकदार उसके जिस्म में शहद की जानी थी और जिस्म में जो बीमारी और जो जहर के असरात थे उसको निकलना था, तो वो उसके लिए 3 दिन का आपने अमल करा दिया। अब आप बात समझ गए ना, इसीलिए अगर किसी भी बात को किसी आयत को जो भी ये हम देख रहे हैं मसलन सूरत इखलास है, मुवज़्ज़तैन है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और फलक है, सूरह फातिहा है, आयतुल कुर्सी है, आयत सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें हैं, इसी तरह से दम से मुतल्लिक मसनून दुआएं जो जादू की दूसरी किस्म में हम पढ़ चुके हैं पीछे पेज नंबर 14 पे, यहाँ से लेकर 1 से 11 आयतें यानी जो आए हमने जो पढ़ी थी ना उसमें से शुरू की जो 11 हैं इनको भी पढ़कर फूंक मारें और दायां हाथ तकलीफ वाली जगह पे रखें। अब आप देखिए इससे क्या पता चलता है कि वो दुआएं जो हमने पढ़ी थी असल में तो वो पनाह की दुआएं ना, आउज़ु बिल्लाही या युबरी का या आप कहते हैं कि अरकी का, तो जादू होगा तो उससे शिफा हो जाएगी, अगर नज़र लगी होगी तो उससे हो जाएगी। आप ये ना कहें कि वही सारी दुआएं हमें इधर भी दे दी हैं, ये एक ही गोली का इलाज है, नहीं कभी बुखार हुआ होता है तो भी लोग एस्प्रिन दे देते हैं, सर में ही सिर्फ दर्द होता है फिर भी एस्प्रिन दे देते हैं, है ना, तो इंटेंसिटी का फ़र्क है, ये नज़रें बंद हो या जादू हो या अगली, अब कुछ चीजें जो हम पढ़ेंगे उनको देखेंगे, असल में सबका मुहरक एक ही है, आपको तकलीफ देना। आपको तकलीफ है, जादू में शदीद तकलीफ दी जाती है, नजरे बद में जरा सी कम हो जाती है। यानी ये इंटेंसिटी है बीमारी का एक ही दर्जा, और अमूमन इसका नतीजा भी एक ही निकलता है, और वो क्या है कि लोग फिर अपने काम के नहीं रहते। ठीक है, तो वो एक आपने जो दौ याद कर लिया, और अगर वाकई आप कर रहे हैं और माशाल्लाह आप उसका टेस्ट भी अगर दे देते हैं तो आप देखेंगे कि आपको याद हो जाएंगी। और जो चीज़ याद होती है ना, वो फिर बंदे की ज़ुबान पे रहती है। मैं पूरे यकीन और शरह सदर से आपसे कहूँगी कि अगर आप उनको अपना मामूल बना लें उसके तर्जमे और मानी पे गौर करते हुए, तो आप अगले साल में काफ़ी कम बीमार होंगे, बेज़निल्ला बेज़निल्ला आप काफ़ी कम परेशान होंगे, आपके लिए इंशाल्लाह ताला बहुत सारी खैर होगी। तो ये मेरे आपके अपने ऊपर होता है कि हम अपने लिए क्या फ़ायदा लेते हैं क्या फ़ायदा नहीं लेते। तो करना क्या, इसको पढ़कर फूंक मारें और दायां हाथ तकलीफ वाली जगह पे रखें। ठीक है, ये सारी चीज़ें बाद में हमें खुद को भी जहनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार कर देती हैं कि हमने एक चीज़ कर ली है। फिर तीसरी चीज़, इन्हें पढ़ने के बाद पानी में फूंक मारें, फिर इस पानी में मरीज को पिलाए और बाकी इस पर बहा दिया जाए। मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगी। देखिए, पानी पे फूंक मारना, जैसे ये आपको एक ब्लू ग्लास मेरे हाथ में दिख रहा है ना, अब इसमें मिसाल है कि ये आयतें पढ़ी तो मैं क्या करूं, इट्स ओके, ये मेरे इसके तखय्युल के साथ है। और अब इसका मैं ढक्कन खोल के इसमें फूंक मारूं और इसमें कुछ करूं तो वो एक अलग चीज़ है। यानी अगर कोई पानी की फूंक कहता है तो वल्लाहु आलम, आई डोंट नो, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना क्योंकि मेरा इसमें कोई अमल नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कि मुंह खोल कर पानी में फूकेंगे तो भी तासीर अल्लाह ने देनी है। शीशे में से आपकी इस फूक को भी अल्लाह नहीं दिलवाना है, अल्लाह नोसी बेस्ट, आप में से जिसको जो करे करे, लेकिन किसी को फतवा ना दे, किसी के साथ इस बारे में एक गलत बातें ना मशहूर करें कि जिससे वो लोग फिर आपसे चिड़खाने लगे। फिर इस पानी में से मरीज को पिलाए और बाकी इस पर बहा दिया जाए, या तेल पर पढ़ा जाए और इसे लगा दिया जाए, यानी मालिश कर दी जाए उसी तेल की। अगर मुमकिन हो तो जमजम या बारिश के पानी पर पढ़ा जाए तो बहुत बेहतर होगा। बात समझ गए ना, यानी एक से दो बरकतें जमा हो जाएंगी। तीन चीज़ें हो गई, तो चौथी क्या है, कुरानी आयात जो जादू के इलाज की दूसरी किस्म में बा और जीम के तहत जिक्र हुई हैं, मसलन सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरत बकरा की आखिरी दो आयतें, कुल हुवल्लाहु अहद और मुअव्विज़ातान लिख कर पानी में डाली जाए और कुछ पानी इस मरीज को पिलाकर बाकी से इसे गुसल करवा दिया जाए, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये थी दूसरी किस्म। पहली क्या थी, नजरे बद लगने से पहले। अब क्या पढ़िए, नजर लगने के बाद। इसके अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी हैं। पहली चीज क्या है कि जिस अगर इल्म हो कि किसकी नजर लगी है तो उससे वजू करवा कर उस पानी से उससे गुसल कराया जाए। दूसरी चीज ये है कि ये आयतें जो अमूमी तौर पे हम पीछे से भी देखते आ रहे हैं, आम है, सुबह शाम की दुआओं में भी हैं, सोने जागने के अज़कार में, इसके लिए आपको अलग से कोई एहतमाम की जरूरत भी नहीं है, इसको पढ़ना मामूल बना लीजिए। और तीसरी बात यह है, जो आयतें हैं ये सारी, इनको पानी में डाल दें तो मरीज को पिलाएं या उसको गुसल कराएं। तो बुनियादी तौर पे आप देखें कि अंदर से जो एक इंग्रेडिएंट निकला है वो आयतुल कुर्सी, मुअव्विज़ातैन, कुल हुवल्लाहु अहद और इसी तरह सूरत बकरा की आखिरी दो आयतें हैं। आपका जिस तरह दिल करे पढ़ें, खुद पढ़ें, गौर सुने, इसकी तफसीर सुने। अब मैं आपको इसमें एक ऐड करा दूं कि आप इन आयतों की तफसीर सुने जाकर और उसमें अल्लाह की बड़ाई को महसूस करें। मेरा यकीन है कि आपका जादू उससे भी काफ़ी ठीक हो जाएगा, आपकी नज़र बद उससे भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जब एक बंदे को अल्लाह ताला की बड़ाई का एहसास होता है तो फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जैसा आप सोचते हैं वो वैसे ही होता है। अब देखिए, ये रास्ते मुख्तलिफ होते हैं, पहुँचते अब एक ही जगह पर है ना, आपको यहाँ से स्टोवनर जाना है तो आपके पास कई रास्ते हैं, आप इधर से जाएँ तो लॉन्गशकूक से मुड़ जाएँ, आप इधर जाएं तो अलनाबरू की तरफ से चले जाएं, शहर से मुड़ के जाएं तो उधर से चले जाएं, आपकी जाएंगे तो स्टोवनर ना। आप और मैं ये जो सारे काम करते हैं ना, याद रखिए, आखिरी बात कहूंगी आज के सेशन की, कि अल्लाह के हाथ में है सिरा। ये सब कुछ करके आपको पूरी किताब पढ़ के भी फायदा तब होना है जब अल्लाह ने चाहना है, तो बस उसके ऊपर नजरें लगा दें, इंशाल्लाह वो आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कोई सवाल इस सोच के साथ आपके जहन में आया जो आज बात हुई है? जी 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 ये तो वो लोग भी लिख के भी देते हैं, जो लोग जिनके पास लोग अमूमन इलाज के लिए जाते हैं, तो आप देखिए कि ये इन्होंने लिखी हुई बात बिल्कुल लिखा हुआ है कि इसको लिखे और उसमें डाल दें। तो वो जो लिखते हैं, हम अगर उनसे पूछेंगे कि भाई ये इसमें तो कुरान की आयतें, तो वो क्या कहते हैं कि वो इंक जो थी वो पानी में घुल गई, पीने वाली बात मुझे नहीं समझ, पीने की भी बात है कि वो असर उसका मुंह पे जाता है, यानी मैं कभी नहीं पीऊंगी, सच बता दूं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए, लेकिन मैं नहीं पीऊंगी अगर मुझे पता चल जाए कि इसमें कुछ लिखा हुआ कागज डाला गया है। कुछ लोग जाफरान से लिखते हैं, कोई कुछ लिखते हैं, तो अल्लाह नोस दी बेस्ट, मेरा इस पर कोई इल्म नहीं है। हाँ गुसल करना है और बात है, लेकिन पीना है तो वो तो आपके अंदर जाएगा ना सर। बहरहाल जो देखें, बात लिखी थी हमने पढ़ ली, इसके बाद जिसको जैसे भी समझ आए, ठीक है, इंशाल्लाह।